उस्मान अज़ीर एक नई स्टोरी के साथ। तो जी, आज की स्टोरी दरअसल ये है कि जेल की स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे। जेल में एक इंसिडेंट की बात करेंगे। जेल में एक इंसिडेंट हुआ था, और जेल में जब आप रहने लग जाते हो ना, सबसे पहली चीज़ तो आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करती है, आपका माइंड, बिकॉज ओवर थिंकिंग अंदर इतनी ज़्यादा है ना, मोस्टली लोग ओवर थिंकिंग कर करके दिमाग ख़राब हो जाता है या तो आपका, या तो फिर अगर आप उसको अपनी एनर्जी को एक फोकस करो, जैसे कि आप नमाज़ पढ़ते हो, कमरे में आते हो, नमाज़ पढ़ते हो, कमरे में आते हो, मतलब इसी रूटीन से रहो, तो फिर आपकी जो है माइंड एक जगह फोकस पे रहता है। उम्मीद की किरण आपका साथ नहीं छोड़ती, और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे गोरे जी इंग्लिश पीपल जो मोस्टली क्रिश्चियंस थे, और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और बाद में उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई, इस्लाम एक हमारे लिए आखिरी उम्मीद थी कि हमने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इस्लाम इज़ द वन रिलीजन दैट मेक्स गेट थ्रू दैट, जो कि लाइफ सेंटेंस थी किसी को, जो भी है, क्योंकि मैंने बहुत से पढ़े हैं इस तरह से, बहुत से लोग बोल बताते भी हैं, उनके इंटरव्यू में मैंने सुने। तो ओवर थिंकिंग मोस्टली किल्स यू। तो आज इंसिडेंट बात करेंगे हम जी, इंसिडेंट ऑफ सिक्स सेंस, कि आपको छठी हिंस काम आपकी करती है, हाउ डज इट वर्क, और आपकी कैसे एक्टिवेट होती है। तो सबसे पहले तो मैं तो खैर काफ़ी टाइम पहले से नमाज वगैरह और योगा इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन अंदर आपको ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब मोस्टली अल्लाह ताला आपके साथ हो ना मोस्टली चीज़ों में, तो अल्लाह ताला आपको इशारे देते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला इशारा ये हुआ था कि बहुत टाइम पहले हमारे जेल के अंदर सख्तियाँ स्टार्ट हो गई थी लोगों के मोबाइल्स की। मोबाइल्स लोग करते क्या थे, छुपा देते थे चुगाठों के अंदर और उसके ऊपर सिमट कर देते थे, सयाने थे काफ़ी ज़्यादा, ऐसी ऐसी जगहों पे, नालियों में, शॉपर में डाल के, नालियों के अंदर बिल्कुल यू नो एयर बैग टाइट करके डाल के अंदर नालियों में डाल देते थे, और ऐसी ऐसी जगह डालते थे कि पूछे ही ना। जेल वाले इतने सयाने हैं, जेल वाले इतने तेज़ हैं कि जेल वाले अपना हर एक कमरे में एक मुखबर रखते हैं, जो कि उड़ती जिसे बोलते हैं, उड़ती वाला एक होता है, या तो उसी कमरे का बंदा होता है, मुखबर होता है, वो उस मुखबर को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाते हैं अपने चक्कर में बिठा के, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी उड़ती जिधर दिल करता है गिनती काट देते हैं और उसको बाहर फिरने देते हैं, जो कि वहाँ पर जेल में सबसे लोग टोरी जो होते हैं, जो खर्चा करते हैं वो करते हैं, उनके लिए ये चीज़ कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, वो मोस्टली ज़्यादातर चक्कर में ही बैठा रहता है, वो कमरे में नहीं आता जब तक गिनती बंद होती है। जेल की गिनती दरअसल 4 बजे असर के टाइम पे बंद हो जाती है, सारों ने बंद होना होता है, लेकिन गिनती करते करते पूरे जेल में काउंटिंग होती है कि सारे कैदी पूरे हैं, और जो कैदी नहीं होते, सज़ा याफ्ता नहीं होते, जो मुलज़िम होते हैं जिनको सज़ा नहीं होती, जो कि जिस ट्रायल जिसे बोलते हैं, ट्रायल हो रहा होता है, जिनका चल रहा होता है, तारीखों पे जाते हैं, उनकी भी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, फिर कमरे बंद किए जाते हैं, फिर बाद में कैदियों के गिनती खुद की होती है, वो खुद ही की करते हैं, फिर बाद में उनको पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पे होते हैं, जिनको ठेका होता है, जो कि ठेके पे चलती है, पूरी अटियाला जेल ठेके पे चलती है, आप लोगों को सच्ची सी बात बताऊं, और वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा जो है हायर नहीं हुआ हुआ, वहाँ पे सब अटियाला जेल में अटियाला गांव के लोग ही हायर हुए हैं, जो इर्द गिर्द रहते हैं, कोई अटियाला रोड पे रहता है, कोई अटियाला रोड से 10 किलोमीटर दूर रहता है, ये जितने भी हैं वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो लगे हुए हैं अंदर, जिनको A to Z भी नहीं पता, जो इन्होंने सिर्फ मैट्रिक की हुई है या 8वीं पास हैं या दूसरी फेल हैं या तीसरी फेल हैं, उन लोगों को इन्होंने ठेके पे रखा हुआ है। पुलिस अफसर जो है अंदर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यही पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादातर, जिन्होंने कोई BA, BCom या जो है आगे जाके कोई मास्टर्स किया होता है या PhD किसी की ना किसी चीज़ में की होती है, तो वो जाके अंदर किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल्स वगैरह में लग जाते हैं, अदरवाइज देर इज़ नथिंग। तो जी, आज हम बात करेंगे, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कुछ टाइम, मैं अपने शाह जी गुलशन शाह जी और एक हमारे साथ होते थे इंतखाब शाह और गुलशन शाह, दोनों भाई थे, मर्डर के केस में अंदर थे, मैं उनके साथ रहता था, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, अल्लाह ताला उनको बरी करे, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। तो दूसरी चीज़ मैं जो है मैंने देखी थी कि उनको अंदर थोड़ी सी ना एक बीमारी पाई जाती थी छुपाने की। देखें, जब आपके साथ कोई हांडीवाल आपके साथ रहता है ना, जब आपका खाता है आपके साथ एक प्लेट में खाता है, यू डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, आपको उसके साथ कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास तौर पे उस बंदे की जिसकी खोकरों के साथ हेलो हाय ज़्यादा हो। जब मैं कमरा 3/6 छोड़ के आया था, 3/6 जिसके अंदर खोकरों का कमरा था उनके मुलाजमों का, तो वहाँ पर बड़ा टैका था खोकरों का, तो वो जब मैं छोड़ के आया था 2/8 के कमरे में जब मैं आया था गुलशन शाह जी से, तो मैंने इनको काफ़ी कहा था कि आप लोग मेरे से इस चीज़ की फ़ायदे उठा सकते हो, मेरे कोकरों के साथ हेलो हाय है, जैसे आपने फ़ोन छुपाना है अपना या कुछ इस तरह की चीज़ें। जेल में दरअसल नया नया इशू ये क्रिएट हुआ कि जेल में सबसे पहले तलाशियाँ आना शुरू हुई और उन लोगों के फ़ोन जब्त होना शुरू हुए जिन्होंने इलीगल रखे थे या फिर जिन्होंने पैसे दिए के भी बाद में छुपा के रखे हुए थे। कमरे में बहुत दफ़ा रात के टाइम गिनती बंद करने के बाद शाह जी और गुलशन शाह जी जो है फ़ोन निकाल के बातें तो करते थे, लेकिन कुछ लोग जब बाथरूम में आते थे तो बड़ी सस्पिशियसली हरकतें करते थे। उनमें सस्पिशियसली हरकतें ये होती थी क्योंकि जब आप अंदर जेल में होते हो ना, आपकी हर एक पे नज़र होती है कि कौन किस तरह से चल रहा है, कौन बाथरूम में जाके कितना टाइम लगा रहा है, कौन बाथरूम में बैठता भी है या नहीं बैठता। खैर शाह जी निकाल लेते थे कमरे में तो साइड पे जाके बाथरूमों वाली साइड पे खड़े होके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके जो भी ये सॉफ्टवेयर एक था वाई ड्राइव वालों की तरफ से वो करते थे और जो है कॉलें मिला लेते थे और घर में हेलो हाय सलाम दुआ जाती थी। कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, बस सलाम दुआ, केस का क्या बनाया वगैरह वगैरह, या राजीनामा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह से सीन चलता था। सीन चलने के बाद साथ साथ ये हुआ कि वहाँ हर कमरे में मुखबर था। जी हर कमरे में मुखबर था और हर कमरे में मुखबर की वजह से बात जो है चक्कर तक जाती थी, लोगों को पता चलता था कि कौन कमरे में क्या कर रहा है। तो शाह जी की इस तरह से फोन की कहानी कहीं आई थिंक चक्कर में पता चल गई और मुझे लगा कि इस तरह से बात जो है फैल गई और बात फैलने के साथ साथ आगे जाके कोई इशू क्रिएट हो सकता है। शाह जी से मैंने जस्ट इन केस पूछा, मैंने कहा शाह जी आपने मोबाइल जो है छुपा दिए हैं ना, मतलब सेफ है ना, घर भेज देना था या इस तरह से रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर तलाशियाँ हो रही हैं, मैंने सुना है वो छैनी थोड़ा लेके भी हैमर लेके तोड़ रहे हैं, दोबारे शुवारे तोड़ के चेक कर रहे हैं, तो वो काफ़ी डीपली तलाशी हो रही है, मतलब ये ऊपर ऊपर वाली तलाशी नहीं है, काफ़ी हैवी किस्म की तलाशी हो रही है। इन्होंने कहा जी हाँ हाँ तसल्ली बख्श हो जाओ, टेंशन ना लो, बस तसल्ली रखो इस चीज़ की, फ़ोन हमने घर भेज दिया है। मैंने कहा ठीक हो गया, आपने फ़ोन घर भेज दिया तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैंने उनको ये भी ऑफ़र कराई थी कि मैंने कहा अगर नहीं भेजा तो मैं कोकरों के पास आपका फ़ोन रखवा देता हूँ, उनके कमरे में तलाशियाँ नहीं जाती किसी किस्म की भी और उनके कमरे में फ़ोन चलते रहते हैं। जेल में पूरी में फ़ोन बंद थे, मोस्टली कॉलें लोगों की भी मैं ही मिलाता था जाके, वो मुझे मैसेज दे देते थे कि मैसेज दे देना मेरी तारीख है, तारीख पे ये चीज़ें लेते आएँ या ये लेते आएँ, बेल का क्या बना वगैरह वगैरह। वो मैं कोकरों के जाके कमरे में जाता था, जब गिनती खुलती थी तो मैं कॉल कर लेता था। ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ 2014 और 2014 के दर से लेके 2016 तक, मैं इन 2 सालों में जेल में रहा, 2 सालों में मैंने क्या देखा, उनमें से ये एक इंसिडेंट है। शाह जी को मैंने इस तरह से बोला तो ठीक, हफ्ते 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते गुजरने के बाद शाह जी ने क्या जो है रिस्पॉन्ड किया, वो ये कहते हैं कि जी मैंने जो है मोबाइल घर भेज दिया, उन्होंने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया। थोड़े दिन गुजरे, दिन गुजरने के बाद इन्होंने नीचे से बारक में सबसे बड़ा जो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने नीचे बारक वालों से कहा कि जी हमें थोड़ा सा सिमट चाहिए, हम लोगों ने जो है ये जो है ना इसको ज़रा सेट करना है, अपना लॉकर है उसमें सुराख हो रहा है, वो टूट रहा है, थोड़ा सा उसको भरना है। तो मुखबर जो कमरे का था उसने जाके चक्कर में ये चीज़ बता दी और बारक वालों ने चुप करके सीमेंट भी दे दिया इनको, इन्होंने ख़रीद लिया उनसे और इन्होंने आई थिंक जो मुझे पता चला था, अच्छा मज़े की बात ये इन्होंने सीमेंट जिस लॉकर में भरना था वो लॉकर भी मेरा था, जो इन्होंने मुझे बड़े प्यार से दिया हुआ था कि आप रख लो उस्मान, ये आप ही का है। याद रखिएगा जब कोई फ्री में आपको कोई चीज़ देता है ना, तो अगर आपके लॉकर में रखता है तो मेक श्योर एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि वो आपके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई हाथ करने की कोशिश कर रहा होता है अपने आप को सेव करने के लिए। जी तो कमरे में कुछ ऐसे इंसिडेंट चलते थे, तो इस तरह से उस टाइम ये चल रहा था। शाह जी को मैंने कई दफ़ा बोला यार क्या आपने फ़ोन भेज दिया है ना, अगर हाँ जी, उन्होंने कहा जी तसल्ली रखो, टेंशन ना रखो, हाँ घर में सेफ है। थोड़े दिन गुजरते हैं तो हफ्ता एक गुजरता है, इन्होंने जब सिमट वाली कहानी की तो मुझे भी थोड़ा शक पड़ गया, मैंने दोबारा पूछा, इन्होंने कहा जी नहीं जी घर में है ये हो। मैंने अपने लॉकर को देखा और एक दिन आया, दिन उस दिन में क्या हुआ कि 11 बज जाते हैं, जब 8 बजे सुबह क्लासें होती हैं, लोग यू नो सबक वगैरह पढ़ते हैं, चर्च वाले लोग चर्च चले जाते हैं, इमाम बारगाह वाले लोग इमाम बारगाह चले जाते हैं, और जिन्होंने मस्जिद जाना होता है नाजरा पढ़ने वो नाजरा पढ़ने चले जाते हैं, तर्जुमे से कुरान जिसे कहते हैं। तो मैं मोस्टली कमरे में ही होता था और ज़्यादातर मैंने भी 14-15 सिपारे तर्जुमे के साथ पढ़े माशाल्लाह से, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन फिर मैं कमरे में इसलिए रहता था कि मोस्टली मैं जो है मोबाइल्स वगैरह के इन चक्करों में पड़ गया था, तो फिर ज़ाहिर है फ़ोन देखने, लोगों के सेट करने, टेक्निकल वगैरह चीज़ें, मैं भी आपको बताऊँगा हुआ क्या था इसका। सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि आपकी स्किल्स कभी भी ज़ाया नहीं जाते, कहीं पे भी हों, आप जेल में हों, जहाँ पे भी हों, आपकी स्किल्स कभी ज़ाया नहीं जाते। खैर एनीवे इसके साथ साथ आगे क्या होता है जाके, लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है कि खैर डिफ़िकल्ट सिस्टम है। खैर मैं आपको बता रहा था, थोड़े दिन गुजरते हैं, सुबह का दिन होता है, 11 बज जाते हैं, क्लासें ख़त्म हो जाती हैं, तो चार कमरों के सिर्फ सामने वाले कमरों के नहीं, 8 कमरे होते हैं हर बारक में, सॉरी 6 कमरे होते हैं हर बारक में, जी सॉरी 6 नहीं होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कमरे होते हैं जी, सॉरी काफ़ी टाइम हो गया, 8 कमरे होते हैं हर बारक में। उन्होंने क्या किया कि सुबह 11 बज जब बज जाते हैं, धूप सूरज बिल्कुल आसमान पे होता है, तो वो कमरों के दरवाज़े खुलवा देते हैं 8 के 8 कमरों के, कि जी दरवाज़े खोलाओ। हालांकि दरवाज़े कभी नहीं खुलते कमरों के, मतलब दूसरे एक दरवाज़ा है जो कभी नहीं खुलता, सिर्फ कमरे का एक बारक के कमरे का एक दरवाज़ा खुलता है, दूसरा दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। उन्होंने दोनों दरवाज़े खुलवा दिए और उन्होंने कहा अपनी बाल्टियाँ वगैरह जो हैं बाहर रख दें, या जो है मोटा छोटा मोटा काम वो जो चीज़ें बाहर रख दी। तो थोड़े टाइम गुजरने के बाद 11:30 बजे तक तलाशी आती है सामने वाले कमरे में, जो कि कमरा नंबर छः था। तो मैं शाह जी को बताता हूँ कि शाह जी उस तरह से कमरे में सामने में तलाशी आई है और चुकन्ने रहिएगा, 12:05 में आई थी, सॉरी तलाशी आई थी, जो कि बिल्कुल हमारे सामने था, अपोजिट सामने के बाद राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो आप अगर आप खड़े हो के सामने 5 कमरे को देखो, लेफ़्ट साइड पे एक और कमरा आता है जी, 5, 6 नंबर, फिर उसके बाद 7वां, फिर 8वां नंबर हमारा आता है। अब सारे कमरों के दरवाज़े खुले हुए थे, थोड़े थोड़े टाइम बाद दरवाज़े बंद होना शुरू हुए। इंचार्ज जो था बारक का, इंचार्ज जो पुलिस वाला होता है वर्दी वाला, वो बोलता है कि जी दरवाज़े बंद करते जाएं। सिर्फ हमारे कमरे का नहीं खुला, मतलब बंद नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ पे काफ़ी शक हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं पूरी बारक के, तो ये हमारे कमरे का दरवाज़ा कैसे खुला रह सकता है। मैं कमरे में जाता हूँ, कमरे में हमारे कमरे में एक पठान सा आया छोटे से कद का, वो बेचारा कपड़े धोता था सारों के, तो मैं उसको कपड़े निकाल के देने लगता हूँ, कहता है इसको ना इस तरह से बाल्टी में डाल के वो कर दो, डिबो दो, तो मैं तुम्हारे कपड़े धो दूँगा। 100 रुपये में 4 जोड़े धो देता था, तो मैं इसी तरह उसको निकाल के दे रहा होता हूँ अपने लॉकर में से। तो इसी तरह से मेरी वहाँ पे सिक्स सेंस कहीं 200% बोलती है मुझे, कभी कभार वो इंसान का ख़ुद का हमजाद ही होता है जो आपको इशारा दे रहा होता है। तो खैर एनीवे इसी तरह ही मुझे इशारा मिला कि ये जो चिट लगी हुई है ना तुम्हारी लॉकर पे तुम्हारे नाम की, इसे उतार के फाड़ के फेंक दो। तो मैं कहता हूँ अच्छा सही, और मैंने एग्जैक्टली उसी टाइम इस सोच को अकॉम्प्लिश करते हुए फौरन करते हुए मैंने फाड़ के बाहर फेंक दी। मतलब वो लॉकर अब नेमलेस लॉकर था, किसी का भी नहीं था, उस पे नाम लिखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आपके लॉकर पे नाम लिखा हो और आपके लॉकर में से कोई इलीगल चीज़ निकल आए, जैसे कि फ़ोन, कैंची, छुरी, चाकू, तो आपको सीधा कसूरी भेज देते हैं पिछली जेल, क्योंकि आपके नाम के साथ एक चीज़ अटैच होगी। खैर एनीवे वो एक लंबी स्टोरी है, उसके भी बताएंगे आपको। थोड़ी देर गुजरती है, हमारे वालिद साहब की मुलाकात आती है, वालिद साहब मिलते हैं हमसे, जो कि बड़े अरसे बाद आई थी, उन्होंने हमें पैसे भी दिए थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं कमरे में वापस आता हूँ तो इतनी देर में देखता हूँ कि कमरे में तलाशी आई होती है, तलाशी जा रही होती है, बड़े भाग दौड़ दौड़ से कैदी भाग रहे होते हैं, तलाशी जा रही होती है। मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ मस्जिद के पास ही, कि मैं आगे नहीं जाता, मैं कहता हूँ नहीं मैं कमरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जाऊँगा तो मेरी भी तलाशी लेंगे और मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, पैसे निकाल लेते हैं, वहाँ पैसे रखने की इजाज़त नहीं है। तो पैसे रखने की इजाज़त है बस, यू नो जब 2 नंबरी चलती है चल, लेकिन यह कि कभी कभार जब तलाशी आती तो वो निकाल लेते हैं पैसे। खैर एनीवे मैं 5वें 6वें नंबर के कमरे के पास चला गया, मैंने कहा जस्ट इन केस देखने के लिए कि क्या हो क्या रहा है। वहाँ अंदर तलाशी हो रही, तलाशी होने के बाद उन्होंने छैनी थोड़ा ला के तोड़ना शुरू कर दी जगह जो इन्होंने जिधर सिमट लगाई थी। इनके रंग हक्के बक्के रह गए, कैदी इनको देख रहे और उनको कन्फर्म हो गया कि उधर ही फ़ोन पड़ा हुआ। और एग्जैक्टली उन्होंने उस जगह पर ला के थोड़ा मारा जहाँ जैसे किसी को उन्होंने मुखबरी की हो, जैसे किसी ने किसी की। खैर एनीवे उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक मोबाइल निकलता है, क्यू मोबाइल वाइट कलर का। और हमारे साथ जो गुलशन शाह जी रहते थे ना, तो वो उनको बड़ा शौक था मुझे मोबाइल सिखाओ, मुझे रीसेट करने का तरीका सिखाओ, मुझे फलाना सिखाओ, मुझे चाचा जी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना सिखाओ। सिखाने का तो मैंने उसको काफ़ी कुछ सिखाया, बट थिंग इज़ एक्चुअली ही वाज स्टार्ट मेकिंग डायग्राम्स ऑन अ रजिस्टर। और वो डायग्राम रजिस्टर बना के वो अपने कमरे लॉकर में रखता था, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाएँ तो आप सीधी छोटी जेल में जाते हो, वो आपको पिछले फेंक देते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता सवाए अंधेरे के, उसे कसूरी बोलते हैं। तो खैर एनीवे इसने जो है मोबाइल छुपाया हुआ था और मैंने इसको काफ़ी डिटेल बताई कि यार देखो कुछ ऐसे रूल्स हैं मोबाइल यूज़ करने वाले के कुछ भी हो जाए आप मर मर जाओ, जो भी आपने अपने कभी भी कोड नहीं देना होता किसी को, मोबाइल का कोड आपने किसी को नहीं देना होता। मोबाइल लॉकर से निकल तो आया, इन्होंने बोला जी ये लॉकर किसका है, कैदियों ने रोला डाला कि जी लॉकर किसका है। तो लॉकर किसके कहने पे सारों ने कहा जी किसका लॉकर है, जब किसी ने आवाज़ ना दी मैंने भी नहीं दी, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो इन्होंने कमरे में दो तीन ऐसे लोग बोले ओ जी है उस्मान दा। तो कौन उस्मान, उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा ऐसे ही है लॉकर, मेरा लॉकर क्यों है, मैं थोड़ा सा आगे होकर बोला, मैंने कहा मेरा लॉकर है, मैं जुमा जुमा 8 दिनों है इनके साथ खाना खाना शुरू किया है लॉकर, ये तो अरसे के बंद है, जाके चेक कर लो, इनको तो 4-5 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, मेरा लॉकर किधर से है। फिर साथ ही गुलशन आगे हुआ, उसने कहा जी मेरा लॉकर है जी, ये बड़ा छोटा भाई। अब छोटे भाई को वो उठा के ले जाते हैं, पकड़ के छोटे भाई को ले जाते हैं, उसको थोड़ी सी एलर्जी भी थी धूप से, उसको धूप में ज़्यादा सेके तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे रोना शुरू हो गया छोटे बच्चों की तरह। तो खैर उसको चक्कर में ले जाते हैं, चक्कर में ले जाने के बाद उसे बिठाते हैं और उसे 2-4 थप्पड़ लगाते हैं और उसे कहते हैं कि चल हमें जो है इसका पैटर्न बता। वो पैटर्न बता देता है, पैटर्न जो था डिफरेंट किस्म से उन्होंने डाला हुआ था, मुझे पता था, उसे पता था या शाहजी को पता था। पैटर्न डालने के बाद उसमें से तस्वीरें निकल आती हैं मेरी। अब मसला ये था कि वो उन तस्वीरों वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है इस कमरे में इस शक्ल का और ये वो, क्योंकि मैंने जो है तकरीबन दाढ़ी शाड़ी रख ली थी, उसमें मेरी क्लीन शेव तस्वीर थी जो मैं अक्सर घर भेजता था या फेसबुक पे अपलोड कर लेता था इंटरनेट के थ्रू। तो वहाँ पे गुलशन शाह जी ने अपना पैटर्न भी एक तो बता दिया, सबसे पहला रूल तोड़ दिया स्टूडेंट होने का, जो पहला रूल था जो मैंने उन्हें सिखाया था कि नहीं बताना इवन के मुझे भी, उन्होंने वो भी तोड़ दिया। खैर एनीवे उसके बाद जब है शाह जी, उनके जो बड़े भाई थे इंतखाब शाह, उन्होंने कहा जी कि मुझे आप लेके चलो, मुझे आप, वो कहते थे कि जी मैं चलूँ क्योंकि आप खोखरों को जानते हो उस्मान, आप चलो वो थोड़ी सी आपकी सुनेंगे, डील शील हो जाएगी। मैंने उनको कहा यार जहाँ डील 10,000 में होगी ना, वो वहाँ पे 25-30,000 रुपया मांगेंगे बिकॉज ऑफ मी, क्या आप मुझे लेके जा रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मुझे लेके जाओ, मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप खुद चले जाओ या किसी और को ले जाओ, मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं नहीं आप चलो चलो चलो, ये कहते कहते वो मुझे नीचे ले गए। नीचे ले जाते ही चक्कर से एक टावर सा बना होता है, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे कैदी खड़े थे, उन्होंने कहा ओए तेरी तस्वीर निकली है चल तू इधर आ जा। मुझे भी उन्होंने पकड़ लिया, मैंने कहा लो जी शाह जी मैंने आपको बोला था कि मुझे न लेके जाओ, अब जहाँ आपका 10,000 में काम ख़त्म हो रहा था वहाँ आपका 30-40,000 रुपया लगेगा 2 बंदों को छुड़ाने में। खैर एनीवे मेरे जो है पास पैसे भी थे, मैंने शाह जी को दे दिए थे, मैंने कहा रख लो जस्ट इन केस शायद ज़रूरत पड़े आपको, मेरे पास फ़िलहाल यही है। इसके बाद फिर शाह जी ने कोई डील शील की, उसके बाद जो है शाह जी ने कमरे में हमें दोनों को ले आए, सॉरी कमरे में हम आ गए, मतलब हम बंद नहीं हुए, हमारी पैसे शैसे दे के उन्होंने जान छुड़वा दी हमारी। पैसे ही चलते हैं अंदर जेल में, खाते हैं सब रिश्वतें हराम खाते हैं अंदर पुलिस वाले जितने भी हैं। खैर एनीवे उसके बाद हम कमरे में आए, शाह जी ने थोड़े दिन एक्सपेक्ट किया कि मैं उन्हें थोड़े से पैसे दूंगा, लेकिन मेरे पास थे ही नहीं, सिंपल सी बात है, या तो मैं किसी का मोबाइल ठीक करता था, कोई कार्टन ले आता था या 7 अप का कार्टन या कुछ इस तरह से, अदरवाइज़ आता कुछ भी नहीं था, कोई देते थे पैसे कोई नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो मैं शाह जी को क्यों बताऊँगा, ये एक मेरा पर्सनल मैटर है। शाह जी ने दरअसल 5,000 रुपये का नोट जो है उड़वा दिया था मेरा, जो मेरा महीने का खर्चा था। तो शाह जी को मैंने फिर यही एक्सपेक्टेशंस दी कि भाई जी अब आप महीना कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, आप खुद ही मंगाओ सालन, खुद ही मंगाओ सब्जियां और ख़ुद ही गुजारा करो। मोबाइल ना मिलने की वजह से थोड़े अरसा गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, फिर इन उनको याद आया कि यार हम उस्मान को कहते हैं कि ये खालिद से बात करे जो खोपड़ों का फाइनेंशियल एडवाइज़र था, शायद वो हमें निकलवा दे हमारा मोबाइल। फिर मैंने इनको बोला यार, मैंने कहा देखो आपके फ़ोन को 2 हफ्ते हो गए, वो फ़ोन बिक बुक गया होगा, उन्होंने बेच दिया होगा, वो ज़्यादा देर रखते नहीं हैं इन चीज़ों को, वो तो तीसरे चौथे दिन ही बिक गया होगा, उन्होंने बाहर भी भेज दिया होगा, क्या पता कहाँ चल रहा हो। अच्छा मैंने कहा जी, नहीं फिर भी तुम ट्राई करो। मैं गया खालिद साहब से मिला, खालिद साहब को मैंने कहा यार इस तरह से फ़ोन पकड़ा था उनका, देखो अगर उनके पास है, नहीं है तो मेहरबानी है, अगर नहीं है तो खैर है कोई बात नहीं, सर पूछ लो। खालिद साहब ने मेरे, खालिद साहब बहुत अच्छे से माशाल्लाह से, उन्होंने कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं दी, और आदत के थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन ये है कि बात जो है काम पूरा करते थे। उन्होंने बाकायदा चक्कर में गए, चक्कर से पूछा, चक्कर में उन्होंने कहा कि नहीं यार वो जो फ़ोन था उन्होंने भेज दिया हुआ है, और बल्कि बाहर भी भेज दिया उन्होंने, तो वो अभी इनके पास नहीं है, होता तो मैं आपको दिलवा देता। कहते हो तो कोई और फ़ोन किसी का दिलवा दे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ ना करिएगा। शाह जी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर शाह जी मेरी जगह होते तो कहते हाँ दे दो, तो ऐसी चीज़ नहीं थी। किसी की चीज़ आपकी अगर गुम हो गई है तो वो आपकी अपनी कोताही की वजह से हुई है शाह जी के लिए। तो यही मैसेज था कि जब एक बंदा बोल रहा हो कि भोसड़ी वालों फ़ोन कहाँ पर रखा है, अगर रखा हुआ है तो मेक श्योर खोखरों के कमरे में रखवा देते हैं, कहीं और रखवा देते हैं, प्रिकॉशंस ले लो, वो बड़ी डीपली चेकिंग कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी ना रखो उस बंदे से कि वो आपकी बाद में जाके हेल्प करेगा। मैंने शाह जी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डांटा भी था कि शाह जी देखो जब आपको मैं बता रहा था तब आपने मेरी सुनी नहीं, और अब आप मेरे से ही हेल्प मांग रहे हो, जब मैं हेल्प कर रहा था आपकी तब आपने मेरी सुनी नहीं, और अब आप मेरे से हेल्प मांग रहे हो कि मैं अब आपकी हेल्प करूँ, वो भी किसी से सिफारिश करके जो बाद में फिर काम भी लेते हैं कोई इलीगल किस्म का। तो इस तरह से काफ़ी इलीगल काम किए हैं जी जेल वालों ने, और हमने जेल वालों के साथ, तो ये होते हैं, रिश्वतें देनी पड़ती हैं तो फ़ोन रखना पड़ता है, तो ये जो है सिलसिला चलता है। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें हम पिछली जेल जाते जाते बचे थे। इंशाल्लाह और भी इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, मेरी कई पेशियाँ हुई जेल में, और जिनमें से एक बहुत ज़बरदस्त पेशी थी और बहुत मज़े की, जो 2 थी ऐसी जिसमें मैंने चक्कर वालों के साथ चक्कर किया था, चक्कर बोलते हैं टावर को ना जहाँ होती है तफ्तीश। खैर एनीवे अल्लाह ताला आप लोगों को यार कभी भी जेल जाने का कोई भी ऐसा मौका ना ही दे, कोई भी जेल हो दुनिया में कहीं भी जगह हो अच्छी जगह नहीं है, दुनिया के दोजख का टुकड़ा इसे बोला जाता है, ये दुनिया के दोजख के टुकड़ों में से ना, दुनिया ये जो आखिरत का जो दोजख का टुकड़ा उनके टुकड़ों में से एक टुकड़ा है छोटा सा, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका दर्द उसकी तकलीफ़ उसकी तन्हाई और उसकी सख्तियाँ, इतनी सख्तियाँ होती हैं कि आप परेशान हो जो। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इन चीज़ों से महफूज रखे, हमें महफूज रखे, मुझे महफूज रखे, बुरे लोगों से, लोगों की बद नज़र से महफूज रखे अल्लाह ताला आप लोगों को। आप लोग जर्मनी में बैठे, यूएस में बैठे मुझे सुन रहे हैं, अगर अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे और अपनी फैमिलियों को, आपकी फैमिलियों को सेफ रखे इंशाल्लाह। नेक्स्ट किसी बहुत सारे मेरे पास वाकयात हैं, मैं आपके साथ वाकयात शेयर करूँगा, नेक्स्ट किसी वाक्य से मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लोगों के साथ शेयर करें कि यार ये बंदा बेवकूफ़ों की तरह चवलें मारता रहता बैठा, तो इसकी भी सुन लिया करो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।